ओम शांति। थैंक यू रितु, वेल स्वीटी बहन, बहुत अच्छा हम सबको एंटरटेन कराया। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट सेशन। अगर जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं बाहर कहीं भी हैं, वो पुनः वापस अपने सीट पर आ जाएं। जो पीछे पीछे बैठे हैं प्लीज थोड़ा आगे की तरफ आ जाएं। जो इस तरफ बैठे हैं क्या वो बीच पे आ सकते हैं, यहाँ प्लीज उठ के आ जाएं। आ जाए प्लीज, आगे आ जाइए। इट विल बी इजी फॉर अस टू डू द मेंटेनेंस आल्सो। एक बहुत ही सुंदर टॉक शो का इस समय आप सब लाभ लेने वाले हैं, और ये टॉक शो है Transforming Challenges into Opportunities। जीवन में समस्याएं या फिर कहिए परिस्थितियां कौन सा द्वार खोलती हैं और कैसे वो द्वार खोलती हैं, उसको समझने के लिए आप सबके लिए ये टॉक शो का अरेंजमेंट किया गया है, और जिसके लिए मैं यहाँ पर कुछ लोगों को आमंत्रित करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों को देखा है और देखकर अपने जीवन को बड़े सुंदर तरीके से संजोया है। कहा जाता है सोना भी तो पत्थर होता है, जब उसे तराशा जाता है तो गहना बन जाता है। अब हीरा भी तो पत्थर होता है, तराशते हैं तो हीरा बन जाता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, लेकिन जब इसे तराशा जाए तो ये जीवन किसी के लिए प्रेरणा बन जाती है। तो इसी भाव को लेते हुए आज कुछ हीरों को यहाँ बुला रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मीरा दीदी से अनुरोध करूंगी जो इस विंग के चेयरपर्सन हैं, कि दीदी आप आए। साथ ही साथ मैं रविंद्र भाई को बुलाना चाहूंगी जो JNP के इंजीनियर हैं। मैं राजकुमार भाई जी को भी बुलाना चाहूंगी जो DSP हैं, हमारी ग्वालियर से पधारे हैं। मैं ईशा बहन को भी बुलाना चाहूंगी जो पायलट हैं इंडिगो में। ईशा बहन प्लीज आए। और साथ ही साथ मैं रितु बहन को भी बुलाना चाहूंगी जो जॉइंट GM हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो आकर मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ मैं ब्रजेश कुमार भाई को भी बुलाना चाहूंगी जो हमारे अदानी पोर्ट से आए हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉक शो लेट अस हैव ए मोमेंट ऑफ साइलेंस। ओम शांति। सबसे पहले मैं अपने बहनों का आवाहन करती हूं कि वो आकर हमारे मंचासीन जो हमारे अतिथि भी हैं और प्रेरणा सूत्र हैं उनका स्वागत करें, और संसार को हरा भरा बनाने की एक प्रतिज्ञा पुनः हम दोहराते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने बहनों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज के इस टॉक शो की शुरुआत करते हुए एक छोटा सा सवाल मैं सभी से पूछना चाहती हूँ कि जिंदगी कितनी खूबसूरत होती, जिंदगी कितनी खूबसूरत होती अगर इसमें टेस्ट पेपर नहीं होते। स्कूल कितना अच्छा लगता है जब एग्जामिनेशन नहीं होता। तो क्या ये सही लगता है? तो दीदी मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि क्या हमें जिंदगी में क्वेश्चन पेपर्स चाहिए? आदरणीय मीरा दीदी जी।
ओम शांति। सुंदर क्वेश्चन है कि आवश्यकता है प्रश्न पेपर की। बचपन से ही, स्कूल लाइफ से ही हम सभी को ये अनुभव है और बहुत अच्छी तरह से ये अनुभव है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमें सेकंड स्टैंडर्ड में जाना है तो क्या होगा? परीक्षा तो होगी, क्वेश्चन पेपर तो होगा, उसका जवाब हमें देना होगा। और जब हम सफलता पूर्वक उसका जवाब देते हैं तब हम फर्स्ट में से सेकंड में जाते हैं। तो ये परीक्षा पेपर होना जीवन में बहुत आवश्यक है और हमारा जीवन भी एक यात्रा है। जब हम यात्रा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि यात्रा का जो रास्ता है उसमें कोई ऊंचाई ना हो, कोई उसमें गड्ढे ना हो। क्या ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कोई खड्डा आया, ये सब होता ही है। लेकिन फिर भी हम बहुत सुंदर रीति से, अच्छी रीति से उसको हम पार कर लेते हैं। तो ये परीक्षा होना ये भी आवश्यक है ताकि हम आगे बढ़े। इसमें सिर्फ हमें हमारा चिंतन जो है वो हमें चेंज करना होगा, या तो कहूंगी कि ट्रांसफर करना होगा सकारात्मक चिंतन में, कि कोई हर्जा नहीं, हम इसको भी क्रॉस कर लेंगे, हम इसको भी बहुत सुंदर रीति से सफलता पूर्वक हम इसको पार कर लेंगे। और साथ में ये भी दृढ़ संकल्प हो कि हम जरूर पार करेंगे, हमें जरूर सफलता मिलेंगी। तो ना परीक्षा से, क्वेश्चन पेपर से ना हम डरे कभी भी, ना कभी भी हम उससे घबराए। रुकावटें आती ही रहती है हर एक के जीवन के अंदर, अलग अलग प्रकार की चैलेंजेस आती ही रहती है, परंतु हम उस चैलेंजेस का किस रीति से दृष्टिकोण उसके प्रति रखते हैं ये बहुत बहुत महत्व की बात है। तो हमें अपना स्वयं का आउटलुक, दृष्टिकोण, वो देखने का नजरिया, एटीट्यूड, ये हमें चेंज करना है। सिचुएशंस तो रहेगी रहेगी। ओम शांति।
थैंक यू दीदी। तो जीवन में टेस्ट पेपर्स की जरूरत ही है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब तक पास नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो प्रोग्रेस के लिए तो टेस्ट पेपर्स चाहिए ही। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल मन में आता है और वो सवाल ऋतु बहन मैं आपसे करना चाहूंगी। जो हमारे टेस्ट पेपर्स आते हैं, अब आने तो हैं, लेकिन टेस्ट पेपर के सब्जेक्ट्स अलग अलग रहते हैं। अब जब हम बड़े हुए हैं, प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं, तो हमारे यही टेस्ट पेपर चैलेंजेस बन जाते हैं। और ये चैलेंजेस हमारे कई प्रकार के हो जाते हैं। अब कई बार हम इसे चैलेंज मानते हैं और कई बार ये चैलेंज नहीं, प्रॉब्लम बन जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं जो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन चैलेंज है।
जहां तक प्रशांति बहन जी का क्वेश्चन है कि लाइफ में तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं और उनको टैकल करना हमारे दृष्टिकोण पर, नजरिए पर डिपेंड करता है। तो मेरा भी एटीट्यूड यही है कि जो लाइफ है फुल ऑफ चैलेंजेस है, और चैलेंजेस और दृष्टिकोण में दोनों में कंपैरिजन मुश्किल है, पर वो डिपेंड करता है कि बंदे की दृष्टिकोण कैसे सोचता है, कैसे देखता है प्रॉब्लम को लिए।
जी, मैं यही सवाल रविंद्र भाई आपसे भी करना चाहूंगी कि हम जीवन के चैलेंजेस को प्रॉब्लम्स कह देते हैं और प्रॉब्लम्स को देखकर डरना शुरू हो जाते हैं। होता तो वो शायद ब्रह्मा कुमारी इस पे हम एक शब्द कहते हैं, होता तो पेपर टाइगर है लेकिन हम उसे टाइगर बना देते हैं। तो ये चैलेंजेस हम प्रॉब्लम के रूप में क्यों देखने लगते हैं और क्यों बन जाते हैं?
ओम शांति। चैलेंजेस को हम प्रॉब्लम के रूप में क्यों देखते हैं? है चैलेंजेस, उसका एक कारण मुझे मेरे जीवन से ये महसूस होता है कि जब चैलेंज आता है तो उस समय हम डर जाते हैं। व्यक्ति क्या होता है, अपनी क्षमताओं को न पहचानने के कारण वो आई हुई बात को, चुनौती को, वो डर के कारण अपनी क्षमताओं को खो बैठता है। तो वो प्रॉब्लम क्यों कब वो खड़ा करता है? दूसरी चीज है, वो धैर्यता से उस समय उस चैलेंज को नहीं फेस करता है, क्योंकि डर जहां आता है वहां धैर्यता खो जाती है व्यक्ति की। इसीलिए ये चैलेंजेस हमें प्रॉब्लम महसूस होने लगते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई भी चैलेंजेस आती है, मेरे जीवन के अनुभव के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले कभी घबराओ मत, क्योंकि आपके पास वो आई है तो दूसरों के पास भी आई होगी, उसने भी तो कभी उसका सामना करके वो आगे गया होगा ना। तो क्यों ना मैं, अभी मेरे पास आई है तो मैं उसको डट के सामना करूं, और डट के सामना करने के लिए धैर्यता की अति आवश्यकता है। प्रॉब्लम कब लगता है दीदी, पता है कि वो सबसे पहला तुरंत हार मान लेता है। जैसे ही चैलेंजेस कोई आ गई, चुनौती, वो उसको इतना बड़ा प्रॉब्लम कर लेता है और वो उसी क्षण हार मान लेता है। और जैसे ही वो हार मान लेता है ना, उसको वो बात बड़ी लगने लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बात ध्यान दे, चुनौतियां आई है उसको पहले जानिए, माना पहचानो, और वो मुझे कुछ सीख देने के लिए आई है तो उसने मुझे क्या सीखना है ये जानो। तो पहले पहचानो, फिर उस बात से कुछ सीखो, फिर कुछ प्लानिंग करो, क्योंकि प्लानिंग करेंगे ना, योजना जब बनाई जाती है ना, जब मेरे पास ये चैलेंजेस आने वाली है, प्रोफेशनल लाइफ में हमें पता चलता है आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होना है, वो सबको पता रहता है। तो योजना बनाइए, और
मतलब
कुछ
आपका कहने का मतलब है कि हर प्रोफेशन में एक डिफाइंड प्रॉब्लम्स होते ही है।
कई उसको छोटे को बड़ा कर देता है, कई तो ऐसे अचानक भी आ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन देखा जाता है कॉमन तौर पर वो बातें आती ही रहती है। तो उसको कई बात में लोग उसको प्रॉब्लम के रूप में खड़े कर देते हैं। तो योजना बना दी आपने, तो नेक्स्ट है, उस योजना को आप दृढ़ता पूर्वक जब कार्य करने जाओगे ना, आप उस चुनौतियों को अवसर में बदली कर देंगे, ये मेरा अनुभव है।
ये बहुत सुंदर बात कही। याद आता है बचपन में एक छोटा सा गेम खेला करते थे, आप सबने भी खेला होगा, कि अंधेरे में एक टॉर्च चलाते थे और उंगलियों से अलग अलग आकृति बनाते थे। आप लोगों ने खेला है ये गेम? यस। और कभी हम कुछ बना देते थे, उंगलियां हमारी छोटी सी होती थी लेकिन वो जब आकृति बनाते थे तो बड़ा बड़ा दिखाई देता था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फियर ऐसा फैक्टर है जो छोटी सी बात को बड़ा करा देता है। तो ईशावन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप आसमान में उड़ते रहते हैं, या बीइंग ए पायलट, तो आपके पास तो अचानक ही प्रॉब्लम्स आती होंगी, सॉरी चैलेंजेस आती होंगी, राइट? तो ऐसे समय पर, क्योंकि आप फ्लाई कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उन चैलेंजेस के समय अपने माइंड को सेट करते हो? क्योंकि जैसे अभी रविंद्र भाई ने कहा, बात माइंड सेटिंग की है, तो आप उस समय अचानक आए हुए प्रॉब्लम्स के समय अपने माइंड को कैसे सेट करती हो? क्या वो पहले से ही सेट होता है या उस समय सेट करते हैं?
ओम शांति। तो अचानक से जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस जो आते हैं फ्लाइट में, उसके लिए हम लोग को काफ़ी ट्रेनिंग भी मिलती है पहले से ही। हमें सिखाया जाता है, एक स्टार्टल इफेक्ट होता है जिसमें अगर पायलट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है जो होने वाला है, तो उसका जो विजन है वो एकदम नैरो हो जाता है ना, उसका सिचुएशनल अवेयरनेस जीरो हो जाता है और वो उस प्रॉब्लम में इतना फिक्सेटेड हो जाता है कि वो ब्रॉडर पिक्चर और आसपास और क्या हो रहा है उसको जज नहीं कर पाता है। तो उस इफेक्ट में कोई भी पायलट ना आए, उसके लिए हमारी रेगुलर ट्रेनिंग्स भी होती है, हमें सिखाया भी जाता है, ऑन ग्राउंड क्लासेस होती हैं और उसमें खास में बताया जाता है कि कुछ भी हो सब कुछ धीरे धीरे करना है, है ना, एकदम धीरे, मतलब टेक अ ब्रेथ एंड देन सी कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। फिर उसको जो भी ट्रेनिंग ऑर्डर में जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप है, हम उसको फॉलो करते हैं और फिर एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो बेसिकली एवरीथिंग इज रिटन, उसको हम बार बार ट्रेन करते हैं खुद को करने के लिए। जैसे हमारे एवरी 6 मंथ्स ट्रेनिंग मैंडेटरी है जिसमें हमारा चेक भी होता है। तो बेसिकली इट्स जस्ट ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस जिससे हम प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं। ओम शांति।
तो इसका अर्थ हुआ कि हमें भी अपने लाइफ में ट्रेनिंग चाहिए। यस। और किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए? जैसे पायलट्स के लिए ट्रेनिंग होती है, कैप्टन्स के लिए ट्रेनिंग होती है, वैसे ही हम सभी जो ह्यूमन काइंड है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें भी एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और वो ट्रेनिंग है इमोशनल लेवल की। तो मैं राजकुमार भाई जी से एक बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आए समय आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, है ना, कि जो मिस्टेक पर मिस्टेक ही करते रहते हैं, ऐसा ही कहेंगे, तो जो मिस्टेक पर मिस्टेक ही करते रहते हैं, तो उस समय आपको क्यों ऐसा लगता है कि इनको ट्रेन करने की जरूरत है? और क्या आपको ये फीलिंग होती है कि अगर इनको ट्रेन किया जाए तो ये ठीक हो सकते हैं?
ओम शांति। डेली जो देखा जाए तो मतलब हमारा समाज पूरी तरह जो पहले था उसमें चेंजेस आ ही रहे हैं, और चेंजेस इतने ज्यादा आ रहे हैं, उसमें नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आ रही है आज की डेट में कि आदमी बार बार गलती करता है। गाड़ी लेके जाना है, हेलमेट पहनना है नहीं पहनना है, तो वो बार बार करेगा कि नहीं हेलमेट नहीं पहनना है हमको, भली से पुलिस कितना भी समझाए कि हेलमेट पहनना आपकी सुरक्षा के लिए, परंतु वो नहीं पहनेगा। तो ये चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए ये है कि हम इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वहां पे हम समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चे फिर बड़ों को बोलते हैं, बोले नहीं पापा आपको पहन के जाना है।
लेकिन या मैक्सिमम राजकुमार भाई ऐसा देखा जाता है कि पढ़े लिखे ही ज्यादा हेलमेट्स नहीं पहनते,
तो उसके लिए अवेयरनेस अपने अंदर से पैदा करना पड़ती है। दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ा रोल आता है हमारी एजुकेशन का, कि हम जो अपनी एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन हमारी कितनी अच्छी है, और उसका इतना अच्छा रोल रहता है कि जब किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे हम और हम उसको उस भाव से समझाएंगे कि जो हमने यहाँ पर सीखा है, जो हम यहाँ पर सीखते ब्रह्मा कुमारीज में आके, और उसको हम उस भाव से सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर वो मानता है और उसको वो फील करता है कि नहीं हमारे भले की बात बताई जा रही है। पहली चीज ये होती है कि जैसे कोई भी चीज उसको बताई जाए पुलिस के अंदर कि ये आप गलत कर रहे हैं, तो वो ये सोचता है कि पुलिस तो बोलती है, या हमारे जो हम हमारा बिलीफ सिस्टम है उसका बिलीफ सिस्टम उसके लिए वो सही है, वो ये सोचता है कि हम सही कर रहे हैं परंतु वो सही नहीं है। तो उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना, उसको बताना कि नहीं आपको ऐसे सही करना है, तो वो एक चैलेंज आता है। उस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लेते हैं, तो सभी को अवेयर करें तो ज्यादा अच्छा।
एक यहां पर भी जो ऑडियंस में बैठे हैं, आप सब इस बात को मानते होंगे कि जब तक हमारा एजुकेशन बिलीफ सिस्टम में नहीं जाएगा तब तक वो अवेयरनेस नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है, ये सही है? सही है, इट्स ओके, लेट अस स्टार्ट विद द टॉप और द बॉटम, बट अवेयरनेस हैज टू बी स्टार्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम माय इनसाइड, या फाइन. अवेयरनेस यानी किस बात की अवेयरनेस और कैसी अवेयरनेस. अब हम जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ये पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से से काम बिगड़ जाता है, गुस्से से बच्चे सुधरते नहीं हैं, वातावरण बिगड़ जाता है, हम जानते हैं. लेकिन क्या हम कर पाते? नहीं हो पाता, कई बार हार जाते हैं, फिर एक तरह से जैसे पछतावा शुरू हो जाता है. तो ये जो अवेयरनेस की बात यहाँ की जा रही है, तो मैं मीरा दीदी से यही पूछना चाहूंगी कि दीदी, जो चैलेंजेस में अवेयरनेस का रोल है, किस बात का अवेयरनेस जिनकी ये बात कर रहे हैं कि इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसके बारे में लोगों को जागृत करना चाहिए, तो कौन सी अवेयरनेस की बात चल रही है, कैसी अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे अंदर, जो चैलेंजेस के समय हम उस अवेयरनेस के कारण बातों को समझ सके और हमारा माइंडसेट क्लियर हो सके.
अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो अवेयरनेस में मुख्य बात तो मुझे कंप्लीटली कॉन्शियस होकर के हमें सोचना है कि ये चैलेंज को, ये जो तूफान आया है, मेरे हिसाब से चैलेंज है, तूफान है या नहीं है वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये चैलेंज है. तो सबसे पहले तो मुझे स्वयं को, मेरी कॉन्शियस जागृत करना होगा और मुझे अपने आप को समझाना होगा कि ये तो आते ही रहते हैं जीवन के अंदर हरेक के, तो मेरे जीवन में भी ये बात आई है और मैं रचनात्मक रीति से इसका रिस्पॉन्ड करूं. हमारे समक्ष बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बचपन में वो अखबार बांटते थे और गरीब मछुआरे के घर में उनका जन्म हुआ. लेकिन आप उनकी यात्रा देखिए, कोई सरल, सहज, इजी या सिंपल यात्रा बिल्कुल नहीं थी उनकी. लेकिन कहां तक पहुंच गए, देश की इतनी बड़ी साइंटिस्ट की इंस्टीट्यूशन में, और कितना आगे बढ़ गए और क्या क्या उन्होंने हासिल किया, ये तो सबको अच्छी तरह से पता है. तो किया ना उन्होंने, सरल रास्ता नहीं था, फिर भी अच्छी तरह से वो चैलेंजेस का सामना किया ना. अब गांधी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए. साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, ट्रेन से उनको कैसे खराब रीति से, किसी को भी इंसल्ट फील हो, ट्रेन से उतारा गया और तुरंत ये जो चैलेंज उनके सामने आई, उससे ही उनको प्रेरणा मिली कि मैं अभी अहिंसा और सत्याग्रह करूंगा और देश को स्वतंत्रता दिलाऊंगा, तो ये क्या कम चैलेंज थी? लेकिन हुआ ना। तो ये हमारे स्वयं के ऊपर ही आधारित है कि हम कितना रचनात्मक रीति से सोचते हैं और तूफान को गिफ्ट, तोहफा। ब्रह्मा कुमारीज में कहा गया है कि कोई भी तूफान आए तो उसको हमें समझना है तोहफा, अर्थात गिफ्ट। और मेरी खुशी मैं गायब उसमें न करूं, ये ध्यान पे हमें रखना होगा। मुझे एक और भी एग्जाम्पल याद आ रहा है कि एक सत्यम कुमार करके भाई था अपने देश के अंदर, और एक्सीडेंट हुआ तो उस दुर्घटना में उसने अपने दोनों पांव जो है वो खो दिए, और व्हील चेयर पे वो जा रहे थे और उसको विचार आया कि मैं सोलार चेयर एक ऐसी बनाऊं जो बहुत सभी दिव्यांग वालों के लिए वो बहुत इजी हो, और उन्होंने वो बनाई। तो ये क्या था चैलेंज, को उन्होंने कैसे लिया इतनी बड़ी चैलेंज लाइफ में, और कितना इजी वे में उन्होंने लिया और वो शोध किया। एक और एग्जाम्पल है हम सभी के समक्ष, थॉमस अल्वा एडिसन का। कितनी बार असफलता मिली उनको बल्ब ढूंढने में, तब तक तो अंधेरे में थे, रोशनी नहीं थी, लेकिन कोई भी असफलता को उसने कभी भी हार माना नहीं। और आखिर कितना समय के बाद बल्ब आ गया। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो शायद अंधेरे में होते, रोशनी नहीं होती। तो सारी बातें हैं हमारे स्वयं के अवेयरनेस के ऊपर।
तो ये बहुत सुंदर श्रृंखला चल रही है। इसी श्रृंखला में एक बात मन में आता है कि ये जो चैलेंजेस है ये किन किन लेवल्स पे आता है। एक तो प्रोफेशनल लेवल पे आता है, वो तो ठीक है, उसके लिए तो हमें ट्रेनिंग्स किए जाते हैं, ट्रेनिंग्स में हम लोग कार्य कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक हमारे ह्यूमन लेवल पर आता है जिसे हम इमोशनल लेवल पे कहते हैं। और इमोशनल लेवल पे जो आता है, और आजकल संसार इसी चीज से बहुत जूझ रहा है क्योंकि मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है। फिजिकल चैलेंजेस डील करना आसान लगता है, लेकिन जब ये मेंटल चैलेंज की बात आती है, मेंटेलिटी चैलेंजेस की बात आती है, तो ब्रिजेश भाई आपसे ये छोटा सा सवाल करेंगे क्योंकि आप पोर्ट्स में हैं। अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग हैबिट्स होते हैं, अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं। Sometimes they are sweet, sometimes they are rude. Exactly. अभी देखो तो sweet हैं, अभी देखो तो rude हो गए, और कैसे बदलेंगे पता नहीं चलता, है ना? तो ऐसे में उस चैलेंज को देखते हुए आप अपने आप को किस प्रकार के, क्योंकि आप 2-3 सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, right? So how you say that the awareness through ब्रह्मा कुमारी's knowledge has helped you to deal with this problem?
ओम शांति। पहले तो धन्यवाद मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिया। आज का जो टॉपिक है उसके लिए एक हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड है कि आपदा को अवसर में हम कैसे बदल सकते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार इसका जिक्र करते हैं। जो दीदी ने मुझे सवाल किया कि ह्यूमन नेचर को हम एज अ चैलेंज लेते हैं क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग है, तो ये चीज मैंने भी ब्रह्म कुमारी से सीखी है। जैसे मुरली में बाबा भी कहते हैं कि सिचुएशन, परिस्थिति और लोग आपके अनुसार कभी होगे नहीं, आपको लोगों के अनुसार अपना काम करना है और अपने ऊपर फोकस करना है। जैसे हमारे लाइफ में भी जितने भी पर्सनल चैलेंज आते हैं, अगर हम चैलेंज की जगह, जैसे अभी कमलेश दीदी ने भी बोला था कि हम सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें, तो हम उसका हल आसानी से ढूंढ सकते हैं और आसानी से उसको आगे बढ़ सकते हैं। जैसे पोर्ट सेक्टर में मैं काम करता हूँ, पोर्ट सेक्टर में जनरली क्या है कि हम जमीन के जगह समंदर में काम करते हैं, और समंदर और शिपिंग के चैलेंज अलग रहते हैं, क्योंकि इतने दिन तक आप फैमिली से दूर है। हम जब जो ऑनबोर्ड लोग काम करते हैं उसके साथ हम जब काम करने जाते हैं, तो वो फैमिली से दूर है, जमीन से दूर है, तो बहुत सारा एंग्जाइटी रहता है, काम करने में थोड़ा कोऑपरेशन में दिक्कत आता है। तो सामने वाले की परिस्थिति को देखते हुए हम सबसे पहले ट्राई करते हैं, जो हमको प्रोफेशनली भी सिखाया जाता है कि हम उसको वेलकम कैसे करें। अगर हमारे पोर्ट पे कोई शिप आता है तो शिप के साथ हमारा जब फर्स्ट इंटरेक्शन होता है तो एक वेलकम मीटिंग के साथ ही रहता है, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो जिसके दौरान हमको पता चलता है कि भाई जहाज में कौन कौन सी चीज है और पोर्ट की भी क्या क्या लिमिटेशन है, तो एक दूसरे की लिमिटेशन को समझते हुए हमको ये ऑपरेशन को पूरा करना है। और एक दूसरे के स्वभाव को, यानी अलग अलग कंट्री से भी आते हैं, सबका अपना अपना बिहेवियर रहता है, तो वो चैलेंज को देखते हुए हमको प्रोफेशनली भी उस हिसाब से ट्रेनिंग मिलती रहती है कि इस सब चीजें से हम कैसे डील किया जाए। ओम शांति।
यही सवाल रविंद्र भाई आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से हैं, और जहां पर, क्योंकि ये ऐसा पोर्ट है, क्योंकि आप जानते हो कि भारत का ये कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है, और यहां पर बहुत सेवाएं ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा की जा रही हैं, तो रविंद्र भाई यही बात आपसे पूछना चाहेंगे, कई लोग होते हैं, कई प्रकार के बिहेवियर्स होते हैं, तो जब ऐसा होता है, अब समझो कोई क्रोध में आया, कोई जोश में आया, तो ऐसे समय पर उनसे डील करने का तरीका क्या रहता है?
ये तो हमारे रोज के मर्रा जिंदगी का किस्सा है, क्योंकि पोर्ट में ये तो होता ही रहता है हर पल। अगर टाइम डिले हो जाता है हमारा एक कंटेनर का भी, तो ऊपर से भी क्रोध आता है, और नीचे अगर हम पास ऑन करें तो उधर से भी वो रिप्लाई जरूर आता है। इससे एक सीखने की बात मुझे ये पता चलती है, कैसे उसको हम हैंडल करें उस सिचुएशन को।
क्या आप कोई ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं?
एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। एक बार शिप दीदी जी, उसका टाइम डिले बहुत हो रहा था, और सिर्फ एक कंटेनर के कारण, वो यूके जाने वाला था और वो बहुत महत्वपूर्ण था। अब वो हमें बहुत सारा ढूंढने के बाद भी मिल नहीं रहा था। वो गलती से क्या हुआ, नाइट शिप में वो शिफ्टिंग के टाइम वो कंटेनर मिडल में रखने के बजाय बॉटम में रख दिया था, वो ए के रो के बजाय ई में रखा गया। बस इतना सा मिस्टेक, सारे हम लोग ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, जबकि वो सिर्फ एक ई रोल में रखा गया था। अब उसके कारण सवेरे हमारे बॉस आ गए, अभी वो हमें फायरिंग करे, रात भर हम काम कर रहे हैं, अब हमें भी तो गुस्सा आएगा ना, और हम नीचे की ओर बोल रहे कि भाई तुमने रखा किधर, कहां कहां हैंडलिंग हुआ। और वो जब प्लानिंग में बाद में पता चला कि वो वहां रखा है, बाद में कितना सारा ढूंढने के बाद सबको काम पे लगाया। तो ऐसे टाइम पर एक बात देखी जाती है कि जो ऊपर से अगर प्रेशर आता है, तो सबसे पहले हम थोड़ा रिलैक्स रहे। इसलिए दीदी जी ने जो 3 स्टेप कहे ना आज, SRP, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। यस मना स्टॉप, उस समय आप थोड़ा रुकिए, ऊपर से आ रहा है क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम्स होगा ना, इतनी बड़ी वेसल रुकी है आपके कारण, तो रुकिए, स्टॉप, आप तो कम से कम स्टॉप, वो बोल रहा है। तो दूसरी चीज रिप्लेस, दीदी जी ने कहा, आप अपना स्थान बदली कर दीजिए ना, ताकि वो जो प्रेशर दे रहा है, आप अगर उस स्थान पर गए जहां प्रैक्टिकली वो आपको ढूंढना है, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
और ये बहुत थोड़ा मुश्किल का काम है
मुश्किल है, लेकिन ये सही बात है।
खड़े होकर देखें कि कैसा प्रेशर है,
कैसा प्रेशर है। और पी माना दीदी ने कहा पॉजिटिव, उस समय अच्छा सोचे कि जरूर मिलेगा, थोड़ा सा डिले हो ही गया है और थोड़ा होगा लेकिन मिलेगा जरूर, लेकिन वो जाना जरूर था तो मिला, तो सबको खुशी हो गई ना। तो कई बात हमें बाद में उसका खुशी मिलती है, लेकिन उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा स्टॉप, अपने आप को थोड़ा सा प्रेशराइज रोकना होगा। ये बात जो एग्जांपल आपने बताया, बाकी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, समझदार को इशारा काफी। आप सभी यहां समझदार बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बात याद रखें, एक्सप्लेनेशन से क्रोध कम हो जाता है। सही बात अगर हम समझे ना,
सो यू वॉन्ट टू से कम्युनिकेशन,
बस तो आप एक्सप्लेनेशन, मैंने ई एक्स से उसको जोड़ा हुआ है। दूसरा है एग्जाम्पल से भी आप अपने उस टाइम को क्रोध को कम कर सकते हो। एग्जाम्पल एक है एक्सप्लेनेशन, दूसरा दीदी जी एग्जाम्पल, तीसरी चीज है एक्सपीरियंस। जैसे अभी दीदी जी ने कितने सारे एक्सपीरियंस अनुभव सुनाए कि चुनौतियों का सामना कैसे किया गया, तो वो सारे अनुभव अगर हमारे पीछे है तो उस समय भी हम शांत रह सकते हैं। चौथी चीज है एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस और चौथी चीज है एक्सक्यूज। ये बहुत बड़ी बात है जो ब्रह्म कुमारीज में सिखाई जाती है, जो मैंने इस यहां आने के बाद वो सीखा कि कोई भी बात जब आती है तो उसको क्षमा कर दीजिए, वो क्रोध में है ना, ये बड़ी बात है, ये लास्ट में आप यूज करो। पहला तीन स्टेप तो आप यूज कर सकते हो ना, तो ई एक्स को आप कभी ना भूले, क्योंकि इस सिचुएशन में ये चार चीजें आपको बहुत मददगार हो सकती है, तो आप सभी इसको साथ में रखें।
यही चीज मैं ईशा बहन आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि रिसेंटली आई वॉज स्टडिंग वन ऑफ द केस स्टडी ऑफ, और वो केस स्टडी में ऐसा था कि एक फ्लाइट नियर अबाउट 1 आवर से ऊपर डिले किया गया एंड पैसेंजर सारे अंदर, इतना डिले होता है तो ऑब्वियस है कि पैसेंजर थोड़े से नाराज हो रहे थे, और 1 आवर डिले का एक ही कारण था क्योंकि ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जा रहा था, वहां से लेके जा रहे थे, और ट्रैफिक के कारण आप जानते हैं जब हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है एक जगह से दूसरी जगह उसे लिया जाता है थोड़ा समय लग जाता है, इसी कारण से ये मेडिकल्स में बड़ा दिखाया था। तो ऐसे समय में ईशा बहन समझो आप वो पायलट हो, तो आप अपने पैसेंजर से उस समय कैसे डील करते हैं? आप जानते हैं कि हार्ट को ले जाना जरूरी है और फ्लाइट पे ही ले जाना पड़ता है क्योंकि बस या ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं, वो 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो उस समय आप तो जानते हैं रीजन, पैसेंजर नहीं जानते, तो वो तो कभी रूड हो जाते हैं, या सम ऑफ द पैसेंजर वर लाइक जैसे कि हमारा कैंसिल करके रिफंड कर दो, हम दूसरी फ्लाइट पे जा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे पायलट आप उन्हें कैसे डील करते हैं, क्योंकि पायलट ही ना फ्लाइट का बॉस होता है, ऐसे ही कहेंगे।
मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि जितना हम पैसेंजर्स के साथ ऑनेस्ट रहते हैं और उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो समझते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि अगर हम उनको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दें तो वो लोग नहीं समझते। मोस्टली जब वो ग्राउंड स्टाफ से डील करते हैं, और मे बी कई बार ग्राउंड स्टाफ को भी रीज़न नहीं पता होता और वो कुछ भी रैंडम रीज़न देते हैं, तो पैसेंजर्स भी कई बार ही समझ जाते हैं कि ये हमें ऐसे ही बोल रहे हैं। बट जितनी बार मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में हमने ऑनेस्ट आंसर्स दिए हैं तो पैसेंजर्स ने हमेशा ही कोऑपरेट किया है।
तो आप देख रहे होंगे कि जब हम चैलेंजेस के साथ वैल्यूज को जोड़ते हैं, या ऑनेस्टी है, कम्युनिकेशन में क्लियरिटी है, तो हमारे चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी में बन जाते हैं, बदलना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि जो जितना हॉनेस्ट होता है ना, उसके साथ लोगों का रहना भी आसान होता है। और हम उस केस स्टडी में देख रहे थे, जब उस पायलट ने बड़ी हॉनेस्टी से ये बात कही, पैसेंजर्स को समझाया, तो पैसेंजर्स ने स्वीकार किया, क्योंकि बहुत बड़ी बात है एक ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करके ले जाना, मानव के लिए किसी की जान बचाना, या बहुत बड़ी बात थी। वैसे एक घंटे तक तो ना स्टाफ बता ही नहीं रहे थे, एट लास्ट पायलट ने माइक उठाया और बहुत प्यार से सबको समझाया, तो सब शांति से बैठे थे। एग्जैक्टली तो इसीलिए हमें भी अपने जीवन में, देखिए ये तो बात एक इंसिडेंट की है, लेकिन हमें भी अपने जीवन में हॉनेस्टी को अपनाना चाहिए। एक हॉनेस्ट क्लियर कन्वर्सेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन तो ठीक है, लेकिन उसमें हॉनेस्टी जरूर होनी चाहिए। अगर वो हॉनेस्टी नहीं हो गई तो रिलेशन बिल्ट नहीं होता, और रिलेशन बिल्ट नहीं होता तो फिर ये कभी भी हमारे लिए चैलेंज ही बन के रह जाएगा, अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। या और शायद इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, और जब हम डील करते जाते हैं तो हमारे मार्क्स ऐड होते हैं, मार्क्स ऐड होते हैं, दो तरह के, प्रोफेशनल भी और एक हमारे जो अल्टीमेट अकाउंट है उसमें भी तो मार्क्स चाहिए हमें, नहीं चाहिए? एक हमारा अल्टीमेट अकाउंट भी चलता है, उस पर भी तो मार्क्स चाहिए। तो आज एक सवाल दिल से आता दीदी, क्योंकि आपके साथ तो हम बहुत सालों से रहते हैं, तो हमें बहुत एक्सपीरियंसेस हमने आपके साथ देखे हैं, कई लोग आते हैं कई तरह से डील करते हैं, लेकिन आप अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़ते। ये मैं समझती हूँ जो भी दीदी के साथ रहते हैं उन सभी बहनों के, आप अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़ती, आप अपनी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं होने देते, मानसिक स्थिति को। तो इसके पीछे क्या साधना है, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप साधना करती हैं, लेकिन वो साधना क्या है, क्या वो हम प्रोफेशनल लाइफ में उस साधना को ला सकते हैं? मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि इवन दो आप सबने सुना कि मेरा दीदी चेयरपर्सन है सैट विंग की, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में शी हैज बीन अ बैंक मैनेजर इन बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक पे तो वैसे भी कस्टमर ऐसे ही आते हैं। या तो दीदी आपसे ये पूछना चाहेंगे।
इसमें सबसे पहली बात है कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हमारा कल्याण ही कल्याण है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसीलिए हम स्वयं का स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी तरह से बैलेंस में रखे, संतुलन में रखे। किसी ने कुछ कहा भी तो भी हम उसका रिएक्ट ना करें।
लेकिन दीदी रिएक्ट तो बहुत जल्दी हो जाता है, वो री तक पहुंचने तक हम एक्ट कर जाते हैं।
रिएक्ट ना करें हम, उसके लिए हमें अपने स्वयं के जीवन में आत्मिक शक्ति हमें बढ़ानी पड़ेगी।
सो यू मीन टू से आत्मिक शक्ति की साधना?
बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी आत्मा चेतना चैतन्य शक्ति, उसमें शक्ति कम है, वो कमजोर है, तो फिर हम रिएक्ट जरूर तुरंत का तुरंत कर देंगे, रुकेंगे ही नहीं। वो कहते हैं ना दुनिया में कि ईंट का जवाब पत्थर से, ऐसे ही कहते हैं ना कि पत्थर का जवाब ईंट से, ऐसे तो कुछ कहते हैं। तो ये बात है कि हम ऐसा ना करें, और उसके लिए मुझे तो यही ध्यान में आ रहा है कि मैं अपनी स्वयं की आत्मिक शक्ति को बढ़ाऊं, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर मेरी कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरे स्वयं के ऊपर तो मेरा कंट्रोल है। तो इस बात को हमें ध्यान पे रखना होगा, क्योंकि हर इंसिडेंट में कुछ न कुछ बात सीखने की जरूर होती है। हम सभी के समक्ष COVID-19 महामारी बहुत जबरदस्त आई, लेकिन उसमें से वर्क एट होम, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन की शिक्षा, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, ऐसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी ऑनलाइन, तो ये सारा तुरंत ये सारा आ गया। तो एक नया आइडिया ही आ गया, तो एक रास्ता निकला।
इवन उन समय में there was lot of programs going on in Brahma Kumaris, जैसे आप लोग आज कॉन्फ्रेंसेस पे आए हैं, उस समय तो कोई यहाँ नहीं आ सकता था, लेकिन हमारे ई कॉन्फ्रेंसेस चलते थे। या इन आवर अवेकनिंग टीवी वी यूज टू हैव ई कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इवन कोविड का समय था। तो कार्य तो नहीं रुकता, जैसे दीदी ने कहा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, लेकिन अंदर कल्याण की भावना हो कि इसमें कोई कल्याण है। तो रितु बहन, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगी, आपके प्रोफेशन में, क्योंकि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हैं, आपको बहुत सारे एयरपोर्ट्स का भी ध्यान रखना होता है, एंड इट्स अ वेरी ह्यूज नेटवर्क, एग्जैक्टली, एंड यू आर प्रॉपरली बेस्ड इन दिल्ली वेयर इट इज द हेडक्वार्टर, सो वहां तो कार्यों का प्रेशर भी बहुत होता होगा, कार्य व्यवहार का प्रेशर भी होता होगा, और कई ऐसे समस्याओं का भी आप लोग वहां सामना करते होंगे। तो ऐसे समय पर बीइंग इन द ऑफिस, मैं आपके सामने एक छोटा सा किस्सा रखती हूँ। आप हाउस वाइफ है, वर्किंग है, एग्जैक्टली, प्रॉब्लम बहुत है, समझ लीजिए ये मई का समय है, मार्च का टाइम है, बच्चों का एग्जाम भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, और यहाँ घर में भी ऑफिस में भी आपकी जरूरत है, तो ऐसे में ये चैलेंज तो बड़ा है, क्योंकि वर्क पे भी आपकी जरूरत है, घर में भी आपकी जरूरत है। ऐसे में आप अपने आप को शांत रख सकेंगे, और अगर रख सकेंगे तो कैसे रखते हैं?
मैं आपके प्रश्न से बिल्कुल सहमत हूँ, ये डिपेंड करता है आपकी आत्मिक शक्ति कैसी है, आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोचते हैं। अगर एक टेंशन लेके सोचो कि बच्चों को पढ़ाना है, ऑफिस भी करना है, तो दोनों मिंगल अप हो जाएंगे, तो हम दोनों का सॉल्यूशन एक टाइम पे नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें बच्चों का भी सोचना है, उनको भी टाइम डिवोट करना है, और ऑफिस में भी टाइम डिवोट करना है, टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द टू थिंग्स।
ये बैलेंस आप कैसे क्रिएट कर पाते हैं उस समय, समझिए ये आपके सामने समस्या आई।
मैडम, आपकी समस्या अगर आती है तो हमारे डिपेंड करता है हमारे में कितना पेशेंस है, हम उस तरीके पेशेंस पे डिपेंड करता है, हमारी कितनी पेशेंस है और हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि हम दोनों चीजें कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ऑफिस भी हो जाए और घर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। ऑल डिपेंड ऑन पेशेंस और आपकी इंटरनल नॉलेज, आपके संस्कार कैसे है, ऑफिस को कैसे टैकल करना और घर को कैसे टैकल करना,
कैसे मेरे वैल्यूज है, कैसे मेरे संस्कार है, इसी में डील करता है। यही चीज राजकुमार भाई मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका जो वर्क है, आपका जो जॉब है, इट इज 24/7। कई बार ऐसा होता होगा घरों में फेस्टिवल पर भी आप लोग नहीं जा पाते होंगे, परिवारों से भी आप दूर रहते हैं, एग्जैक्टली, हम कई बार लोगों से सुन भी लेते, परिवार वालों से सुनते, घर में ऑफिस मत लाओ, शायद आप लोगों को ये अनुभव होता होगा। तो ऐसे समय पर वर्क एंड लाइफ का आप बैलेंस कैसे कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एग्जैक्टली, हमने रिसेंटली एक छोटा सा किस्सा सुना था, आप ही मतलब एक पुलिस फैमिली का, जिसमें बेटी की शादी थी और उनको काम पर जाना पड़ा क्योंकि देश बुला रहा था। तो ऐसे सिचुएशंस तो आपके सामने आते होंगे, ये तो चैलेंज है, तो आप ऐसे चैलेंज को किस तरह से देखते हैं?
ओम शांति। ओम शांति। चैलेंजेस तो पुलिस में डेली आते हैं, और डेली आने के बाद में हमारी लाइफ में एक चीज जो शुरू से हमारी ट्रेनिंग में दी जाती है, वो दी जाती है अनुशासन। और अनुशासन एक तो होता है सेल्फ से, और एक होता है बाहर से। बाहर से मतलब हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो अनुशासन में रखा जाता है कि नहीं हम आपको ये सजा दे देंगे, ये सजा दे देंगे, इससे अनुशासन एक कायम होता है। और एक होता है सेल्फ अनुशासन। अगर आपको ये अपने वर्क से प्रेम है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, सेल्फ अनुशासित होंगे। तो ऐसे चैलेंजेस बहुत आते हैं जिसमें आपको कभी महीने भर के लिए आपको ट्रांसफर हो जाते हैं, इधर से जाना पड़ता है। कई कई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको जंगल में भी जाना पड़ता है, कोई ऐसी घटना हो गई है। तो उस टाइम पर एक, अगर मैं एक तुलनात्मक रूप से करूं कि मेरी पहले की लाइफ और ब्रह्मा कुमारीज में आने की लाइफ, ये दोनों का एक कंपैरिजन निकालता हूं, तो मैं एक बड़ा मतलब एक 180 डिग्री का मतलब मैं वो देखता हूं कि मेरी पहले की लाइफ में मैं उसको चिड़चिड़ेपन से करता था, अरे नहीं जाना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। आज की डेट में मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूं कि आज जा रहे हैं कि ड्यूटी में जाना है, आज ही पहुंचना है, खजुराहो पहुंचना है या बागेश्वर धाम में पीएम साहब आ रहे हैं तो वहां पे पहुंचना है। तो पहले ये लगता था कि कहां ड्यूटी में जाएंगे, पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे, सब कुछ मतलब तबीयत भी ठीक नहीं है। परंतु जब ये सोचते हैं कि नहीं, नई जगह देखेंगे, नई जगह जाएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, वहां पर किसी को मतलब नए लोगों से मुलाकात होगी, तो ये दोनों चीजें आप अपने प्रोफेशन में कर सकते हैं। तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे कहीं आप जंगल में गए, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको जंगल में अब चूंकि सर्च चल रहा है और वहां पे देखना भी है, सभी लोग हैं, तो उसको अगर आप एंजॉय करके करेंगे तो वो सही रहेगा और वही बर्डन नहीं बनेगा। तो ये चीजें चैलेंजेस पुलिस में काफी आती हैं, डेली हर दिन नई चैलेंज होती है। तो मेरा तो ये मानना है कि पहली चीज है कि हम स्वयं के लिए मतलब स्वयं जो है वो उस चैलेंज को पहले स्वीकार करें, और फिर हम जहां जा रहे हैं तो हमारी भावना क्या है, हम किसी की मदद के लिए जा रहे हैं, किसी को मतलब पुलिस की मदद मेरे हिसाब से सबसे पहले नंबर ईश्वर को याद करता है, फिर वो अपने माँ बाप को याद करता है, फिर थर्ड नंबर पे वो सोचता है कि पुलिस को बुलाया जाए, हमारी मदद के लिए पुलिस ही आएगी। तो उस टाइम पर हमारी जो भावना रहती है, एक हमारा काम रहता है कि हाँ नहीं ये हमारा काम है, और दूसरी हमारी भावना, यदि हमारी भावना है नहीं हमको उसकी मदद करना है, और अगर उसकी दृष्टि अगर रहेगी तो निश्चित तौर पे वो काम इतना अच्छा होगा, उसमें दुआएं भी बहुत मिलेंगी। इसमें पुलिस के प्रोफेशन में हम बोलते हैं कि मतलब बद्दुआ भी बहुत मिलती है और दुआएं भी बहुत मिलती है। तो अगर देखा जाए, अगर आपने अगर उसको पॉजिटिव रूप से लिया है तो दुआएं बहुत मिलती हैं, दुआएं किसी की मदद के रूप में मिलती हैं, आपने किसी को इमरजेंसी में मदद किया तो बहुत दुआएं मिलती हैं, और हर दिन नए चैलेंज आते हैं, तो चैलेंज को पॉजिटिव लेके आप बहुत अच्छा एक प्रोफेशन कर सकते हैं। मैं एक घटना याद आ रही है मुझे, एक उज्जैन सिंहस्थ की कि एक अम्मा जी थी, वो गुम गई थी और लगभग वो 10 दिन तक वो हमारे कंट्रोल रूम में रही, मैं कंट्रोल रूम में ड्यूटी थी मेरी, तो 10 दिन तक रही वो। हमने बहुत कोशिश की कि मतलब किसी तरह उनके घर वालों को किस तरह से पता किया जाए, परंतु उनके जो भी डेली आती थी वो डेली बताती थी कि मेरा घर वहां है। अब वो सिटी मेरठ सिटी की रहने वाली थी, बड़ा बहुत बड़ी सिटी है, अब वो पता जानती नहीं, कुछ भी जानती नहीं। धीरे धीरे क्लू निकाल निकाल के मतलब हमने वहां के थानों को परेशान किया कि भाई आप वो रेफ्रिजरेटर वाले जितने भी हैं, वो मैकेनिक था उनका लड़का, तो उनको पता कीजिए। तो जब वो 15 दिन बाद जब वो अपने परिवार से मिली और वो मतलब हम लोगों को जो डेली मिलती थी उनके पास पैसे थे नहीं बिल्कुल भी, खाना वाना वहीं खाती थी, तो वो इतनी दुआएं देके गई, इतनी दुआएं देके गई कि पूछिए मत। तो ये है कि चैलेंज को आप पॉजिटिवली कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओम सर,
यह बहुत सुंदर बात है आपने कही कि जो दुआएं मिलती हैं जब हम ऐसा कार्य करते हैं, वो जो दुआएं मिलती हैं वो हमें नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार करती हैं। एग्जैक्टली, आप सब मानते हैं इस बात को, जो दुआएं मिलती हैं हमें नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार करती हैं। और अगर हमने उन दुआओं में दुआओं को काम में लाया तो वो हमारी शक्ति बन जाती है। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, क्योंकि कई बार दुआएं मिलती हैं और कई बार दुआएं नहीं भी मिलते हैं। तो जब हमें दुआएं नहीं मिल रही हैं, उसे दुआओं में ट्रांसफॉर्म कैसे करें? ब्रजेश भाई, आपसे ये छोटा सा सवाल है। दुआएं तो नहीं मिल रही, लेकिन उसे दुआओं में ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि तो हमें नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार होना है, तो वो हम कैसे करें?
ओम शांति। अगर हम कुछ काम करते हैं, हमको एक्सपेक्टेशन रहता है कि उसका हमको क्रेडिट मिले, हमको उसका ब्लेसिंग मिले, पर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, सामने वाले के संस्कार ऐसे होते हैं कि वो एप्रिशिएट नहीं करते। तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ ब्रह्म कुमारी से ही सीखी है कि सामने वाले की परिस्थिति या स्थिति कोई भी हो, हमको उसको एक्सेप्ट करना है और हमको उसको दुआएं देना है। अगर हम उसको दुआएं देते जाएंगे तो एंड ऑफ द डे हमको हमारा जो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, वो परिस्थिति के हिसाब से उसका फल भी हमको मिल जाएगा, गिफ्ट के रूप से
मिल जाएगा। मतलब आपका कहना है, ईशा बहन आपसे भी यही सवाल, अगर समझो वो दुआएं नहीं दे रहा है, उसे क्या हम दुआओं में ट्रांसफर कर सकते हैं? और अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कई बार हाउसवाइफ्स को देखती हूँ, पूरा दिन कार्य करते हैं। पूरा दिन कार्य करते हैं और कई बार हम देखते हैं सारे घर वाले सो जाते हैं, उसके बाद सोने जाते हैं, सवेरे जल्दी उठते हैं। ऐसे परिवार के कई वरिष्ठ हैं जिनके साथ यही व्यवहार होता, लेकिन फिर भी उनकी दुआएं पूरी नहीं मिलती उन्हें, कभी कभी उन्हें दुआएं नहीं भी मिलती। तो ऐसे समय में उन्हें दुआओं के रूप में कैसे ट्रांसफर करें?
सबसे पहले तो अगर हमें दुआओं में कन्वर्ट करना है तो हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा, स्पेशली जब हम घर पे काम करते हैं, कि ये मैं सेवा के रूप में कर रही हूँ, है ना। मैं जिनके भी साथ हूँ मैं यहाँ पर उनकी सेवा के लिए हूँ, और उस सेवा में अपना इंटरेस्ट ढूंढना। जैसे हम कुक करते हैं तो कई बारी बहुत लोग आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं कि बनाना ही है घर वालों के लिए, बट उसी को अगर हम शिफ्ट करके खुशी से, है ना, हम देखते हैं घर में प्रेजेंटेशन, कुक्ड फूड के प्रेजेंटेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बट मुझे लगता है कि जब हम खाते हैं तो सबसे पहले अपनी आंखों से खाते हैं, है ना, जो फूड हमें अपीलिंग लगता है वो हमें अच्छा लगता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम अपने लिए, जो हमें भी देखकर अच्छा लगे, जब हम सारा फोकस अपने पे शिफ्ट करते हैं तो बाहर की चीजें हमें इतना अफेक्ट नहीं करती है। तो जैसे जो मैंने प्रेजेंटेशन किया वो मुझे देखकर अच्छा लगा, फिर सामने वाला अप्रिशिएट करे ना करे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली ये एक ट्रेनिंग है अपनी माइंड को। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, इट इज नहीं तो स्टार्टिंग में बहुत विड्रॉल सिम्टम्स जैसा होता है कि हमने इतना किया फिर भी किसी ने कुछ कहा नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया। बट जितना जितना हम ट्रेन करते जाएंगे और अपने को याद दिलाते जाएंगे कि ये मैं किस लिए कर रही हूँ, तो आई थिंक वो शिफ्ट इन थॉट प्रोसेस आता ही है। मतलब जैसे हम लोग ट्रेनिंग के लिए, जैसे हम लोग फ्लाइट्स में करते हैं, हम लोग की ट्रेनिंग रेगुलरली ही चलती है, रेपिटेटिव इंटरवल्स पे चलती है, फॉर द रीजन बीइंग कि हमारी वो मसल मेमोरी बन जाए, है ना, एक पर्टिकुलर सीन को इस तरह से डील करना है। तो इस तरह से सिचुएशंस में भी रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें एक डेली ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। योगा भी हम करते तो उसमें कहते हैं इट्स 99% प्रैक्टिस 1% थ्योरी, तो जो हम सुनते हैं वो है सब थ्योरी,
जब हम अप्लाई करते हैं तब वो प्रैक्टिस में आता है. ओम शांति.
दीदी आपके सामने भी यही सवाल कर रहे हैं कि दुआओं में कैसे बदुआओं को ट्रांसफर करें, क्योंकि कार्य व्यवहार में तो आते हैं, हमें दुआओं की शक्ति तो जमा करना है, लेकिन फिर भी कई बार हमारे कार्यों पर भी, हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो दुआएं नहीं दे रहे, तो ऐसे समय में उसको दुआओं में कन्वर्ट कैसे करें, उसके लिए स्पिरिचुअली हमें किस तरह की विचारधारा अपने अंदर बनानी है.
उस समय हमें हरेक के लिए शुभ भावना रखनी है. जब हम शुभ भावना रखते हैं, शुभ कामना रखते हैं, उस आत्मा के प्रति, माना जो हमारे समक्ष जो भी है उसके प्रति, उस मनुष्य आत्मा के प्रति, तो जो हम देते हैं वो अभी नहीं तो बाद में, बल दिखाई नहीं पड़ता है, वो एक्सप्रेस शब्द बोल करके नहीं देते हैं, वो उनका स्वभाव है. कईयों का ऐसा स्वभाव होता है, तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन हम अपना कार्य अविरल बिना रुके कॉन्स्टेंटली, हम हमारा जो स्व का भाव है वो हम नहीं छोड़े. उसके कारण हम अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज न करें, डिटेरियोरेट ना करें. हमारी तो उन्नति हो रही है कि हम बड़े प्रेम से वो कार्य कर रहे हैं, जिगर से, हृदय से वो कार्य हम कर रहे हैं, तहे दिल से हम वो कार्य कर रहे हैं. जितना हमारे से हो सके उतना हम करते हैं फुल कैपेसिटी में, और फिर सामने से क्या आ रहा है. वैसे तो कर्म फिलोसॉफी है कि जो हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं, प्राप्त करते हैं. तो इसलिए ये सारी बातें हमें किसी के बारे में, स्वभाव के बारे में हमें आगे नहीं सोचना है. सिंपल बात, शुभ भावना, शुभ कामना, फिनिश.
मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है जो बहुत प्राचीन हम लोगों ने मोरल स्टोरी में सुना था, कि एक साधु और बिच्छू की कहानी सुनाते हैं कि बिच्छू बार बार डूबता रहता था और साधु उसे बाहर निकालता रहता था, और जब जब वो बाहर निकालता था तो बिच्छू उसे टंक मारता था, फिर आगे जाता, फिर वो डूबने लगता, साधु उसे वापस बचाता, फिर वो डंक मारता. ऐसे करते करते 10 बार ऐसे होने लगा, तो उनके बाजू में ही एक व्यक्ति खड़ा था. उसने साधु जी से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो कहते हैं साधु जी कि मैंने क्या किया. तो कहते हैं जब वो आप देख रहे हैं कि वो डंक मार रहा है तो आप उसे बचाते क्यों हैं. तो बड़ा सुंदर मॉरल ऑफ द स्टोरी सुना था कि बिच्छू का काम है डंक मारना, वो अपना काम अच्छी तरह कर रहा है, और मेरा काम है बचाना, मैं अपना काम अच्छी तरह ना करूं. जब वो डंक मारकर ये सिखा रहा है कि मैं अपना काम अच्छी तरह कर रहा हूं, तो बचाकर मैं ना सिखाऊं कि मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूं. यस. तो हमें हमारी जो अपनी पर्सनल संस्कार है उसे भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि जब हम अपने संस्कारों से अलग हो जाते हैं तो हमारा संसार बिगड़ जाता है, हमारा संसार बिगड़ जाता है. एंड वो संसार फिर जो जनरेट होता है, कंप्लेंट का संसार जनरेट होता है. कंप्लेंट यानी जैसे टॉप लेवल वाले कह देते हैं कि बॉटम वाले अच्छे नहीं है, बॉटम वाले कह देते हैं टॉप अच्छे नहीं है, घर वाले कह देते हैं ये अच्छे नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, बच्चे कह देते मम्मी पापा ठीक नहीं है, नॉर्मल हो गया है, एक दूसरे पर हम ब्लेम कर देते हैं. लेकिन अगर हम अपने संस्कार, हर कोई अपने संस्कारों को बनाए रखे नहीं रविंद्र भाई, तो फिर क्या होगा, संसार. जी दीदी जी.
एक बात मुझे इसमें कहनी है, कि सामने वाले के स्वभाव और संस्कार की इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस में मैं नहीं आऊं। तो हमारा स्वयं का विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमें अच्छी तरह से रखना है। हमें उसको जरा भी कमजोर होने नहीं देना है। दो भाई थे, ट्विन ब्रदर थे, और दोनों बाहर जा गए। दोनों के पास छाता नहीं था, बारिश आई, दोनों भीग गए। जब घर में वापस आए तो शाम को एक भाई को फीवर बुखार आ गया, दूसरे भाई को कुछ भी नहीं हुआ। दोनों के पास छाता नहीं था, दोनों एक साथ बाहर गए थे, एक साथ घर में वापस आए, बारिश भी हुई, दोनों के ऊपर हुई, दोनों भीगे हुए। लेकिन ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि एक जो था वो हेल्थ में स्ट्रॉन्ग अपने आप था, तो उसको कुछ असर नहीं हुआ सीजन का। उसकी हेल्थ ऐसी सेंसिटिव नहीं थी, और दूसरे की थी, वो वीक था। तो विक्टिम कौन बनता है? जो वीक होता है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी के भी असर में, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ओम शांति।
तो ये रविंद्र भाई जैसे पूछ रहे थे आपसे, जैसे अभी दीदी ने कहा, हमें किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है। अगर मुझे किसी के प्रभाव में नहीं आना है तो मुझे क्या करना होगा?
उसके पूर्व में दीदी जी से जो शुभ भावना की बात दीदी ने कहा, प्रैक्टिकली बताता हूं। घाटकोपर में अपना जो सेंटर है उसके बगल में थोड़ी जगह होती थी, तो वहां हम फंक्शंस करते थे। तो अपना रूम छोड़कर 3 नंबर में रहने वाला बहुत परेशान करता था। तो अब यही बात आ गई ना, चैलेंज आ गई थी। तो अभी दीदी जी ने जैसे कहा कि शुभ भावना देना है, तो जैसे हम मुरली में भी सुनते हैं, हमारी जो रोज की चलती है, कि कोई बद दुआ दे हमें दुआ देनी है। तो फिर मुझे नहीं, ये महसूस माना अंदर नहीं, मन मानता था कैसे दू ना, क्योंकि वो जब इतना मुझे तकलीफ दे रहा है कैसे करूं। लेकिन युक्ति कैसे रची कि जब वहां जाए ना तो वो होना चाहिए। तो हमारा सेंटर के पीछे के साइड में एक पीपल का पेड़ है, और वहां कहते हैं विष्णु का वास है, और वो उसके बाजू में ही रहता था वो उसका। तो मैं वहां जाकर प्रेयर करता था कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत अच्छा है, ये मेरा दोस्त है, और ये एक ना एक दिन ये भगवान के कार्य में मदद करेगा, ये हमेशा खुश रहे, एक स्टेटमेंट। लेकिन मैंने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया, मैं ड्यूटी पर जब निकलता था घर से तो उस पेड़ के वहां जाकर ये प्रेयर करता था, और जैसे ही मैं साइन, मुझे बस पकड़नी पड़ती थी हमारी JNPT की, तो वहां जाते जाते 5 पीपल के पेड़ थे, तो मैं कुछ सेकंड वहां रुककर वही प्रेयर करता था उसके लिए। अब इसको आदत में डालने के लिए पहला मेरा 1-2 मिस होता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने जानबूझकर वो आदत डाली। और उसके कारण क्या होता था, जैसे ही यहां से निकले फिर दूसरा पेड़ आता था, मेरा पहला ही माइंड सेट हो जाता था कि मुझे जाकर वो करना है। और दीदी जी 5वें तक जाते जाते वो सब कार्य पूरा होता था। और क्या कहूं, 5 साल में वही व्यक्ति आज बाबा का बच्चा बनकर बाबा के लिए सहयोग कर रहा है,
यानी ईश्वरीय कार्य में आज वो बहुत अच्छे मददगार हैं।
बहुत बहुत शुभ भावना क्या होती है ना, ये मैंने अपने जीवन में सचमुच अनुभव किया, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी दीदी जी ने अभी जो बात कही कि कोई
संस्कार मुझ पे
प्रभाव न डाले, क्योंकि ये दुनिया ही कलयुग है और ये प्रभाव डालेगी। संसार में दो बातें प्रभाव डालती है, एक है व्यक्ति और दूसरा वह माना वस्तु। सभी ध्यान देंगे ये दो बातों में ही हमारा प्रभाव कलयुग में रहता है और वो बलशाली हो चुका है। अब वस्तुओं का प्रभाव कम कैसे करना है वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तियों का प्रभाव माना उसके संस्कार का प्रभाव अगर मेरे ऊपर न पड़े, इसके लिए एक सुंदर धारणा हम सभी को बनानी है और वो है कि आत्मा के ओरिजिनल संस्कार कौन से है उसको जानना। जो सवेरे अमृत वेले में आए होंगे उन्होंने जरूर इस बात का कलर से अनुभव किया होगा कि मुझ आत्मा का निज संस्कार प्रेम है, मुझ आत्मा का निज संस्कार शांति है। ये डेली अगर आप कलर से प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन भी होगा और आपके अच्छे संस्कारों का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा, न कि उसके बुरे संस्कारों का प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसीलिए आज ये बात आप नोट करें कि अपने आत्मिक अभ्यास का जोर बढ़ाइए कि इस देह को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति ऊर्जा, जिसको हम सिंपल टंग में कहेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये अभ्यास प्रभाव नहीं डालेगा।
यू नो जी दीदी,
मुझे ये कहना है कि रविंद्र भाई ने जो 5 साल तक कंटिन्यू किया वो शुभ भावना, माना जो बहन ने अभी कहा था ना, ईशा बहन ने, कि धैर्यता रखनी चाहिए, आपने कहा था ना, तो धैर्यता इतनी रखी कि 5 साल लगा लेकिन उनकी शुभ भावना कंटिन्यू रही। तो हमारे जीवन में भी क्या चाहिए, क्या चाहिए हमारे जीवन में भी, धैर्यता चाहिए। अगर उन्होंने सोचा अगर होता था कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कुछ भी तो चेंज इसमें आई नहीं है भाई में, लेकिन नहीं, उन्होंने 5 साल तक कंटिन्यू किया। तो ऐसे हम भी लगातार कंटिन्यू करें, बीच में से छोड़े नहीं।
So this is a very beautiful life example in front of us. कि अगर constantly good wishes करते हैं तो good wishes का बहुत 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 असर आता है और ये transformation लाता है, हमारे challenges को opportunity में बदलता है। जिनको देखने से हमें डर लग रहा है, जिनको सोचने से भी हमें डर लगता है, उनको समझकर जीवन में उसको enjoy कर सकें, ऐसा फेज आ जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस। या जैसे भाई भी कह रहे थे 5 साल तक, अभी कई तो हम में से 1 साल मैक्सिमम, 2 साल, 3 साल, लेकिन इट्स अ वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन आपने एक बात, इस बात से मैंने नोटिस की कि हमें अपने माइंड में कुछ रिमाइंडर्स डालने पड़ते हैं कोई भी कर्म करते हैं। एग्जैक्टली, माइंड में रिमाइंडर्स है ना दीदी। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि अभी हम जब जॉब पे होते हैं, यू नो वी आर एट द जॉब, अब एक बार जब हम एंटर कर गए ना, फिर एग्जिट तक वो रिमाइंडर्स नहीं हो पाते, वो रिमाइंडर्स नहीं हो पाते। जैसे रविंद्र भाई ने भी कहा एक दो बार छूट जाता था, ऐसे ही था ना रविंद्र भाई, राइट? तो ये चलो इन्होंने तो पीपल के पेड़ को उस अनुसार लिया। Now my question announced to all you professionals is, इस तरह के reminders क्या professional life में set कर सकते हैं? बोल सकते हैं शायद?
मैं तो कहूंगी कि मैं lucky हूं, क्योंकि जैसे ही हम flight में ऊपर जाते हैं तो हम वैसे ही disconnect हो जाते हैं नीचे से, तो और बाहर का नज़ारा भी इतना खूबसूरत है जो हमें प्रकृति से भी जोड़े रखता है, ऊपर से इतना सुंदर आसमान, कभी सनराइज दिखता है तो कभी सनसेट, है ना, तारे दिखते हैं इतने सारे। तो ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना मैं नेचर के साथ कनेक्टेड रहती हूँ, है ना, वो मुझे अपने से ज़्यादा जोड़ता है।
और मेरे प्रोफेशन में मैं तो ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं फोन से भी डिस्कनेक्ट ऊपर नहीं चलता है, ओनली कोई फैमिली से, कोई फ्रेंड से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ कंट्रोलर से कनेक्शन है विच इज़ वेरी प्रोफेशनल. तो फॉर मी इट इज़ वेरी इजी टू डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट टू माई सेल्फ. दैट्स ऑल आई कैन जस्ट से, आई एम ब्लेस्ड. थैंक यू.
यही चीज रितु बहन मैं आपसे भी कहना चाहूंगी, क्या प्रोफेशनल लाइफ में हम इस तरह के ब्रेक्स ले सकते हैं?
बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम घर सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, अगर हमारी आत्मा में लव अफेक्शन और सबके लिए प्यार है, वही चीज हम अगर ऑफिस में मेंटेन करके रखें तो हमारा सारा दिन सारी जिंदगी वो खुशी से निकल सकती है. बॉस भी खुश और सबॉर्डिनेट्स भी खुश, ऐसे ही घर का हाल होता है.
खुश
घर में पति से अच्छी तरह बात करोगे तो पति अच्छा जवाब देगा, अगर बुरी तरह बात करोगे शाम को खाने को पड़ेगा. तो इसलिए बैलेंस जरूरी होता
है. यू कैन,
जो अभी सिस्टर ने कहा उसमें हम लोग को सिखाया जाता है बिहेवियर ब्रीड्स बिहेवियर, है ना. ये हम लोग की एक लीडरशिप क्लास होती है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि आप जिस तरह का बिहेवियर करेंगे वही आपको सामने से रिस्पॉन्स आएगा. तो भले ही आप प्यार से करें तो प्यार से आएगा, और जैसे ही आप इरिटेट होते हैं तो आप देखेंगे सामने वाला और चढ़कर ही आपसे बात करेगा. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन विच वॉज टॉट टू अस, बिहेवियर ब्रीड्स बिहेवियर. थैंक यू,
इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड.
कहना चाहूंगी अपनी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में ही रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू अदर्स, चाहे वो घर हो या बाहर हो. और हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं.
और ये रिमोट कंट्रोल हम किसी को ना दे, इसीलिए मैं आज आप सभी से यहाँ शेयर करना चाहूंगी. इन ब्रह्मा कुमारीज वी हैव अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रैफिक कंट्रोल. ट्रैफिक कंट्रोल एक हमारा ऐसा डिवाइन प्रोसेस है जो आप यहाँ जब हमारे आश्रमों में आते हैं, आप हमारे जितने भी सेवा केंद्रों में भी देखेंगे, एक हमारा फिक्स टाइमिंग है जब हमारे एक मिनट के लिए म्यूजिक या सॉन्ग बजता है. एंड वी ऑल प्रैक्टिस द सेम थिंग विच यू आर सेइंग, टेकिंग बैक द रिमोट कंट्रोल. हम अपना रिमोट कंट्रोल वापस ले लेते हैं अगर हमने किसी को दिया है, यू नो. और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, अगर आप लोग भी ब्रह्मा कुमारीज के इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहें, हमारे एक फिक्स टाइमिंग है. मॉर्निंग हम 4 बजे करते हैं, फिर 5:45, आप में से कहीं ने एक्सपीरियंस किया होगा 5:45 दैट इज अ म्यूजिक और अ सॉन्ग देयर. देन वी हैव एट 7, 10:30, 12, देन इवनिंग 5:30, देन 7:30, देन नाइट 10. ओके, ये ब्यूटीफुल टाइमिंग है जब हमारे जितने भी सदस्य हैं ब्रह्मा कुमारीज में, डेडिकेटेड ही नहीं, जो हमारे यहाँ आते हैं एज ए स्टूडेंट्स, वो भी कोशिश करते हैं फॉलो करने की. या वी ऑल्सो हैव अवर एप्स, आप लोग चाहे तो प्ले स्टोर से ले सकते हैं, जिसमें आप ये सेटिंग कर सकते हैं. आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो ये जो ब्रेक मोमेंट्स हैं ये हमें सेट करने के लिए बहुत बहुत मदद करते हैं, राइट.
ये जो एप्स हैं ये एक्चुअली, पहले तो मुझे लगता था एक मिनट से क्या ही होगा, मतलब इट्स जस्ट अ मिनट, बट आजकल तो हमारे पास ये स्मार्ट वॉचेस भी हैं और फोन्स भी हैं, एंड वो जब नोटिफिकेशन आता है एंड आई स्टार्टेड रिलीजियसली प्रैक्टिसिंग इट कि मैं एक मिनट के लिए, इवन इफ इट इज जस्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, है ना, अगर बहुत थॉट्स भी चल रहे हैं सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करें या कोई एक पॉजिटिव थॉट जो मैंने सोचा वो मैं क्रिएट करूं, बहुत बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है. दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन द वे यू थिंक, मतलब आपका पूरा थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है.
तो ये जो मूवमेंट ऑफ साइलेंस की बात की है, मैं ब्रिजेश भाई,
लाइफ में यू जस्ट से थिंक बिफोर यू थिंक.
वी हैव टू थिंक,
थिंक बिफोर यू थिंक,
एग्जैक्टली. तो ब्रिजेश भाई, राजकुमार भाई, मैं आपसे भी यही सवाल कर रही हूँ, ये ब्रेक मोमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोफेशंस में?
ओम शांति. तो जो आपने जो प्रश्न किया और जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मिनिमम ब्रेक हमको कब कब लेना चाहिए, तो हम कॉलेज काल से सीखते आए हैं कि हमको मल्टीटास्किंग करनी चाहिए थी, पर मैंने कुछ सालों में सीखा है कि मल्टीटास्किंग के डिसएडवांटेज बहुत है. जैसे हम प्रोफेशनली ऑफिस में मैं जाता हूं तो फैमिली से बात करने का टाइम एक फिक्स करके रखा है कि लंच आवर में हम बात करते हैं, लंच के अलावा हम कभी बात नहीं करते, तो उससे मेरा थोड़ा फोकस बढ़ता है काम के प्रति। और दूसरा, जो आपने अभी ट्रैफिक कंट्रोल की बात की है, तो वो भी मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है और उससे मेरा फोकस काफी बढ़ा है। मेरे पास वो ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप भी है जो मैं वर्किंग आवर्स में रखता हूँ, 9 से 5 बजे तक का उसका शेड्यूल रहता है। तो हर घंटे रिचार्ज होने का, मीटिंग से पहले फोकस होने का, और जो आउटपुट होता है कंपनी के अंदर जब हम मीटिंग करने जाते हैं, तो कई बार मीटिंग के अंदर जो एजेंडा हम सेट करते हैं तो एजेंडा साइड में रह जाता है और बातें कुछ और ही चलती है। तो इस एप्लीकेशन से और ये रिचार्ज करने से हम मुद्दे से भटकते नहीं है और दूसरे लोगों को भी एजेंडा फिक्स करने में मदद करते हैं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। धन्यवाद।
ओम शांति। पुलिस की लाइफ में तो थोड़ा सा ड्यूटी अगर चल रही है तो फिर आप इधर उधर नहीं देख सकते, परंतु मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब से ज्ञान में आए, तो ज्ञान में आने के बाद में जब भी थोड़ी सी फुर्सत मिले, अब टाइम अगर फिक्स नहीं कर पा रहे हैं आप, जैसे अगर टाइम फिक्स कर लिया बहुत अच्छी बात है जब आप फुर्सत में, नहीं तो जब भी आप फुर्सत में आए थोड़ी देर के लिए भी अगर आपने भगवान से कनेक्ट हो गए उस टाइम पे, परमात्मा से कनेक्ट हो गए, शिव बाबा से कनेक्ट हुए, तो आप रिचार्ज हो जाते हैं। और जो स्ट्रेस आने वाला है या जो आगे ड्यूटी के संबंध में आएगा या कुछ भी आएगा, तो उसको आप बेटर तरीके से मतलब सॉल्व कर सकते हो और एक अच्छा वातावरण ऑफिस में भी बना सकते हैं। तो ये मतलब प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा जो आसपास के जो लोगों से कनेक्शन है वो अपने आप अच्छा हो जाता है। हमको जो मदद मिलना होती है, जो हमको जनता से मदद लेना है, तो वो इतना अच्छे तरीके से वो समझ जाते हैं और तुरंत के तुरंत वो मदद भी करते हैं। और साथ में हमारी एक कनेक्टिविटी, जो हमारा प्रेम से बोलना होता है, उससे बड़ा अच्छा हो जाता है। क्योंकि एक थोड़ा सा मैंने मतलब हमारी लाइफ में देखा है कि पुलिस थोड़ा सा रूटली बोलती है, रूटली मतलब एक टेंशन में रहते ज्यादातर, क्योंकि ड्यूटी बहुत ज्यादा वर्ष रहते हैं, कभी 16 घंटे काम चल रहा है तो 16 घंटे का काम चिड़चिड़ा हो जाता आदमी। परंतु यदि वही पुलिस वाला यदि प्रेम से समझाता है और प्रेम से किसी को बोलता है, तो इतना उस व्यक्ति को भी प्रभावित होता है और वो स्वयं भी वो काम करवा लेता है। तो ये एक मतलब एक मेरे जो जीवन का है वो मैंने अचीव किया है, ये मैं शेयर करना चाहता हूं। थैंक यू।
दीदी, मैं आपसे एक छोटा सा, हम सभी के लिए, ऑडियंस के लिए,
मुझे रवि भाई के लिए एक बात कहनी थी। रवि भाई ने जो सुनाया ना 5 साल की जो बात कही, कि संकल्प जो है, माना विचार जो उनको आया कि मैं ऐसे करूं, तो वो है बीज, सीड है वो। लेकिन सीड जब हम प्लांटेशन करते हैं तो कई ऐसे सीड होते हैं, बीज ऐसे होते हैं जो 5 साल के बाद उसमें से फल निकलता है। नारियली का है पेड़, मैंगो का है, हर एक का अपना अलग अलग समय होता है। तो जो बीज हम बोते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका फल मुझे अभी का अभी 1 साल में या 2 साल में मिले, ऐसे नहीं होता। हर एक संकल्प जो भी हम करते हैं उसका फल कब मिलेगा वो टाइम जो है वो हम नहीं कह सकते, ये मुझे कहना था। लेकिन तब तक हम कंटिन्यू करें। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच। नहीं, इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर ये टॉक शो रहा कि भाई हम किस तरह अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदले, उसके बड़े सुंदर स्टेप्स हमने देखे। सबसे पहली बात अवेयरनेस, हमें ये जागरूक होना है कि ये चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये चैलेंजेस हैं, और अगर मेरे पास आया है तो मैं ही इसे पार करूंगा या करूंगी। तो ये अपने अंदर एक पक्का विश्वास, दूसरी मुख्य बात पेशेंस, धैर्यता। धैर्यता जितना हम अपनाते हैं और जितना समय, ये धैर्यता का कोई टाइम लिमिट नहीं है कि एक घंटा या दो घंटा, धैर्यता जब तक मंजिल ना मिल जाए। और तीसरी मुख्य बात, उस धैर्यता को जीवन में लाने के लिए हमें कुछ समय का ब्रेक लेना चाहिए, पॉजेस, जैसे आप सबको यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल की बात कही, तो अभी हम उसी ट्रैफिक कंट्रोल का अनुभव करेंगे। क्योंकि जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं अपने माइंड का, तो हम अपने मन से कहते हैं बाकी सब विचार छोड़ और पॉजिटिव ग्रीन थॉट्स कर। आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल में सबसे ऊपर रेड लाइट होता, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन। एग्जैक्टली, गाड़ी रोकनी है तो कौन सी लाइट चाहिए? रेड। हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी की गाड़ी चल रही है उसे रोकने के लिए रेड लाइट, अब नहीं। और अपने मन को फिर ग्रीन लाइट दिखाइए। आप जब ड्राइविंग भी करते हैं तो ये लाइट्स चलते हैं, तो इसी तरह का अभ्यास कीजिए। तो अभी हम वो 5 पावरफुल अफर्मेशंस, अफर्मेटिव थॉट्स हमारी आदरणीय मीरा दीदी से लेंगे। 5 पावरफुल अफर्मेशन थॉट्स जो हमें इन मोमेंट्स ऑफ ब्रेक में करना है। दीदी, वो 5 पावरफुल अफर्मेशन थॉट्स आप हमें दीजिए।
सबसे पहला, मुझे अपने स्वयं के जीवन में सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। दूसरा, मेरे विचार मुझे पॉजिटिव और रचनात्मक रखने हैं। तीसरा, मेरी वाणी सदा मधुर वाणी हो जो सबको सुख पहुंचाए। चौथा, मैं हमेशा श्रेष्ठ कर्म करूं। कर्म चाहे ऑफिस में कार्य करने का हो, चाहे घर के अंदर कुछ कार्य हो, चाहे भोजन बनाने का कार्य हो, लेकिन अगर वो कार्य परमपिता परमात्मा की जो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उनकी याद में कोई भी व्यर्थ विचारों को छोड़कर, उससे मुक्त होकर मैं पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल ये मैं करूं, तो मेरा कर्म बदली हो जाएगा साधारण कर्म से असाधारण अर्थात श्रेष्ठ कर्म में। और पांचवी बात, मैं जहां भी हूं तो वहां का एटमोस्फियर, पूरा वातावरण, वो भी मैं अच्छी तरह से रखूं। ये 5 बातें बहुत हम सभी के जीवन के अंदर महत्वपूर्ण है। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हम इन्हीं 5 लाइंस को अपने लाइफ में रिपीट करेंगे। आई एम प्योर, आई एम पावरफुल, आई एम फुल ऑफ गुड विशेस, I am God's child with God's energy and my role is to spread this God's power. चलिए इन्हीं 5 lines को अपने मन में दोहराते हुए हम अपने मन को meditation।
एक संकल्प जरूर करिए अपने मन के अंदर कि मैं कोई भी challenges का जो मेरे जीवन में आए, ऐसी कोई भी चैलेंजेस का सामना करने के लिए सक्षम हूं, कैपेबल हूं, ये संकल्प रखिए।
तो वे मेडिटेट। दो मिनट सभी अपने नोटबुक्स वगैरह साइड में रख दें, मोबाइल्स वगैरह भी साइड करें, और जो गीत सुन रहे हैं आप उन गीत के अर्थ में अपने मन को टिकाएं।